राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे भीनासर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
आकाशात् पतितं तोयं सर्वं गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से जल बरसता है तो वो बड़ी छोटी नदियां बन नाला बन नदियां बन करके सब समुद्र में चला जाता है। सर्वंगच्छति सागर ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। सबको नमस्कार करो, भगवान को ही हम कर रहे हैं तो भगवान चला जाएगा। कहीं नमस्कार किया जाए वो भगवान को पहुंचता है। जैसे नमस्कार किया हुआ भगवान को पहुंचता है ऐसे ही संपूर्ण जीवों के साथ प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव किया जाए तो भगवान को पहुंचता है, वो भगवान की सेवा हो जाती है। भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो जीव मात्र को प्रसन्न करो, सब में भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जितने प्राणी है ये जंगम ही नहीं स्थावर भी वृक्ष लता दूब घास आदि इस सबके भीतर भगवान विराजमान है। यथा प्रवृतिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो सब में भगवान विराजमान है, सब में भगवान का पूजन करे, भगवान का ऐसे भाव करके नमस्कार करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की अप्राप्ति नहीं है, अपहचान है, पहचानते नहीं है। तो सब में भगवान दे करके नमस्कार करे तो भगवान आप साफ प्रकट हो जाए। भगवान देखते अब मेरे को देख तो लिया, अब छिपने से क्या फायदा, छिपेंगे नहीं, प्रकट हो जाएंगे। तो सबके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव किया जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हमारे शास्त्र में जीव के उद्धार के लिए बहुत सुगम सुगम उपाय बताए हैं, सरल सरल उपाय बताए हैं। जिन लोगों को उसके विश्वास नहीं है वे कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। कठिन नहीं है, सुगम है। कठिनता है उसके प्राप्ति की इच्छा, परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहें ये इच्छा कठिन है। इच्छा हो जाए तो प्राप्ति कठिन नहीं है, भावना ही भीतर कठिन है कि भगवान की प्राप्ति करें। अगर ये भाव हो जाए तो बहुत सूक्ष्मता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कल मैं बात कहने का आरंभ किया था जो कुछ बातें कही उस वेले आज कहने का विचार है। तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? आपस में प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। जो कोई मिले उनसे प्रेम का, आदर का, सत्कार का, उनके भले का, उनके कल्याण का, उनके सुख का अपने विचार रखना चाहिए। हमारा भाव ऐसा हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सभी सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके घरों में आनंद मंगल उत्सव होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव है, ये व्यापक भाव है। तो व्यापक परमात्मा को प्रकट करने वाला है। तो सबके साथ अच्छा बर्ताव, वो अपने शुरू कर देना चाहिए घर में से ही। अपने पास जितने प्राणी रहते हैं, घर के सदस्य निकटवर्ती है, उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उनका भला कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ऐसे सद्भाव से सेवा की जाए तो परमात्मा की सेवा हो जाती है। जैसे सब देवों कल्याणों का नमस्कार भगवान को पहुंचता है, ऐसे जीवों पर दया करके सबकी हित की बात करने से वो भाव, वो प्रेम भगवान तक पहुंचता है। भगवान की प्राप्ति चाहता है, उसके लिए उचित है संपूर्ण प्राणियों को सुखी देखे, अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से सबको सुख पहुंचाना है, और पहुंचाना अपनी शक्ति मुताबिक। ऐसी बात नहीं है ज्यादा आदमियों को सुख देने से ज्यादा पुण्य होता है, थोड़े आदमियों को सुख देने से थोड़ा पुण्य होता है, ये अटकल नहीं है। आप कितनों को सुख पहुंचा सकते हैं, आपकी ताकत कितनी है, आपके पदार्थ कितने पास में है, आपके पास वस्तु कितनी है, आपके पास विद्या कितनी है, योग्यता कितनी है, उसके अनुसार सेवा करो, पूर्णता प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा इन वस्तुओं से खरीदे नहीं जाते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है। आपकी नियत सबको सुख पहुंचाने की है तो सबके सुख पहुंचाने का पुण्य हो जाएगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, तो ये मानस पुण्य है कि सब सुखी रहे, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब परमात्मा की प्राप्ति कर ले, सब तत्व की हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए। ऐसी अगर रात दिन आप भावना रखें और ऐसा ही बर्ताव करें, भावना होने से बर्ताव सुगमता से हो जाएगा। जैसी नियत होती है, विचार होता है, वैसी चेष्टा स्वाभाविक होती है। तो वह अगर चेष्टा सबके हित की होगी तो भगवान पर असर पड़ेगा। भगवान दे देते हैं भाई, इसके पास थोड़ी शक्ति है, इतने पर भी सबके कल्याण का भाव रखता है, तो मेरे पास ज्यादा शक्ति क्या काम आई जब सबका कल्याण न करे। तो भगवान की शक्ति आपके साथ हो जाती है, क्यों? भगवान है सुरलम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति, प्राणी मात्र के सुरद है परमात्मा। और आप प्राणी मात्र का हित चाहते हैं तो परमात्मा के वो जो भावना है उसके साथ आपकी भावना मिल जाएगी। जैसे बलिवेष्ट देव करते हैं विश्व मात्र को भोग लगाते हैं, यज्ञ होम करते हैं, जैसे रोजाना स्नान कर शुद्ध होकर पामे कई करते में शुद्ध जल देकर लाल पुष्प नहीं तो कुमकुम डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, ऐसे तीन अर्घ दिया जाए तो त्रिलोकी को जल पिलाने का माध्यम होता है। क्रिया तो छोटी सी है परंतु मात्र प्राणी को जल पिलाने का महत्व होता है, क्योंकि बरसती जितनी वर्षा बरसती है वो सूर्य के किरणों से बरसती है। निगृहामि उत्सृजामि च, भगवान कहते हैं मैं ग्रहण भी करता हूँ सूर्य रब से और त्याग भी करता हूँ। तो भगवान सबसे रस खींचते हैं, गांव में सुखाओ चीज सूख जाती है तो सबका रस खेच करके भगवान संग्रह करते हैं सूर्य भगवान, और वो वर्षा द्वारा सबको बरसा देते हैं, सबको तृप्त करने के लिए बरसाते हैं। तो हमारा अर्घ दिया हुआ सूर्य ग्रहण करेंगे वो जल इतने बड़े भारी सदावर्त में शामिल हो जाएगा, जैसे सैकड़ों मन का अन्न बनाया जाए और अब 2-4 4-5 चावल उसमें हम ही कर दिया पड़ा तो सब में हमारा भोजन पहुंच जाएगा। थोड़ा पहुंचेगा दाड़ा दो ना, नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे तो भी हमारा भाव तो पहुंच ही जाएगा, ऐसे ये जल पहुंच जाएगा सब जगह। तो इसी तरह से सबके सुख की, सबके आराम की, सबके सेवा की, सबके हित की भावना हमारी होगी तो भावना भगवान तक पहुंच जाएगी। और भगवान की शक्ति जो सूर्यम सर्वभूतानाम पालन शक्ति है, सबका पालन करने वाली परमात्मा, उस पालन करने की शक्ति के साथ हमारी सास में शक्ति हो जाएगी तो सबका कल्याण होगा। तो सबका कल्याण होगा तो खुद का कल्याण तो हो ही जाएगा, ये एक थोड़ा ही बाकी रहेगा। जिसमें भाव इतना उत्तम है उसके कल्याण में क्या संदेह है। अच्छे भाव वाले संत होते हैं तो संतों के विषय में भी हमने पढ़ा है सुना है कि एक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो उसमें देवता नाचने लगते हैं, पितर खुश हो जाते हैं और सनाथाते भूर भवती है, पृथ्वी सनाथ हो जाती है, पितर खुश होते मध्वर से वैष्णु हो जाता सनस्त जाता भविष्यति। हमारे वंश में वैष्णव पैदा हो गया ये संपूर्ण का कल्याण करने वाला होगा, हमारा कल्याण करेगा, हमारी रक्षा करेगा। कुलं पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे स्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेता। जिसका चित्त परमात्मा में लग गया, जो परिपूर्ण परमात्मा सब जगह ब्राह्मणों में क्षुप्ति वेशभूषा में मनुष्यों में पशुओं में पक्षियों में देवताओं में नरक के जीवों में शरीर के जीवों में भूतों में प्रेतों में पिशाचों में राक्षसों में सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। तो उस परमात्मा के स्वरूप में हमारी सद्भावना पहुंचेगी, प्रेम का भाव पहुंचेगा, हित का भाव पहुंचेगा, तो वो उनको मालूम हो चाहे ना हो, सबको सुख पहुंचेगा, कितना पुण्य होगा, सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सबका भला हो जाए, इस भाव से हम सेवा करेंगे, प्रेम का बर्ताव करेंगे तो हमारा कल्याण तो चुटकियों हो गया, सोते हो जाएगा स्वाभाविक। तो घर में अपने जितने सदस्य हैं उनके प्रति भाव हो गए, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन बनावे, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई जन हो, अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, उनमें हमारी सद्भावना की वजह से परमात्मा की उपासना करते हैं। वे किसी नाम से, किसी रूप से करें, किसी विधि से करें, परंतु उनका भाव एक परमात्म शक्ति है विलक्षण, उसके प्रति है, उस भाव में हमारा भाव मिल जाए तो दुनिया का कल्याण बड़ा सुगमता से हो जाए। और हमारी भावना समझ कल्याण होगा ही, भगवान पर असर पड़ता, मैंने कहा भगवान पर, तो भगवान विचार करते हैं कि भी मेरे को तो चाहिए कल्याण, कौन नहीं तो सबका कल्याण चाहते हैं, इसकी तो मतलब करो, इसका कल्याण करो और इस सबके कल्याण में मदद हो जाए तो भगवान करेंगे। सर्वश्रेष्ठा मृदि सन्निविष्टा, भगवान की पूजा भगवान का पूजा हो गया, सर्वश्रेष्ठा सबके भगवान विराजमान है। तो यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम प्रथम स्वकर्मणात्म अभ्यस्त सिद्धि विंदति मानव। तो घर में से अपने बड़े छोटे सब सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबकी भावना हो, सच्ची हो, ऐसा भाव रखते हुए अपने अधिकार के अनुसार सबको प्रणाम करें, सबको नमस्कार करें, सुबह शाम दोनों वक्त। छोटे छोटे बालकों को भी सिखाना चाहिए, देखो भाई तेरी माँ है, ये तेरी बढ़िया है, बड़ी माँ है, ये तेरी साथी काकी है, ये बड़ी बहन है, ये बड़ी भौजाई है, इसको नमस्कार करो। ऐसे बच्चों से भी कहा जाए तो बचपन से वो सीख जाए। मैंने ऐसे ऐसे पुरुष देखे हैं, एक भाई मिला था, वो कहता था मैं तो भौजाई जी की गोद में ही पला हूं, छोटा था, मेरी भौजाई जी मेरे पालन करती थी भाभी, तो वो मेरी माँ ही है, उसमें ही पला हूं। कितनी बढ़िया भाव है, बच्चों का जो लाड़ प्यार कर दे वही माँ, इस तरह का भाव बढ़ जाता है। तो बच्चों को ऐसे भाव भरो और ऐसा भाव आप भी रखो सेवा करने का, तो सबके चरणों में नमस्कार करना बड़े भाव से, इनमें सब में भगवान विराजमान है और पद में ये बड़े हैं, इस वास्ते नमस्कार करने से भगवान खुश होंगे। संत महात्मा दूर बैठे बैठे खुश हो जाते हैं, जिन संतों की प्रसन्नता से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वे संत सुन लेते हैं कि देखो ये इस घर में बड़ों का बड़ा आदर होता है, बड़ों की बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ों को ये नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं, बड़ों की आज्ञा पालन करते हैं, तो संतों पर दूर बैठों पर असर होता है, बड़े अच्छे सज्जन पुरुष है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो रोजाना नमस्कार करने का जिसका स्वभाव है, बड़ों को प्रणाम सुबह शाम करता ही है, नए मिले तो उनसे नमस्कार करता ही है, और जो आज्ञा पालन करते हैं और नमस्कार करते हैं, उनकी चार चीज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है और विद्या बढ़ती है और संसार में यश कीर्ति महिमा होती है और शरीर में बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, ये सब की चाहना होती है, उम्र की वाह वाह की चाहना होती है, बल की चाहना होती है, जीता रहने की चाहना होती है, विद्या की चाहना होती है। तभी तो आप लोग इतने आयो को विद्या हम जाने जिससे कल्याण हो जाए, तो ये सब नमस्कार करने से बढ़ते हैं। ऐसी विलक्षण बात है। ये मार्कंडेय ऋषि हुआ है, जो ऋषि ये सप्त ऋषि हुए हैं, चिरजीवी ऋषि, चिरजीवी, तो चिरजीवी में एक मार्कंडेय जी का नाम आता है। तो मृगन्म ऋषि थे, उनका ये पुत्र हुए, तो उनका स्वभाव था थोड़े बड़े हुए तो बेटा नमस्कार करो, ये ऋषि आए, महात्मा आए, संत आए, ये बड़े नमस्कार करो, ऐसे नमस्कार करने कहा। तो ऐसे नमस्कार करने थे, एक दिन को ये सिद्ध पुरुष आ गए, कहा बेटा नमस्कार करो, तो उसने नमस्कार किया बड़े आदर से, तो बच्चे की तरफ देखने लग गए। तो पिताजी ने पूछा, महाराज इतना क्यों देखते हैं, क्या बात है? कि बच्चा तो तेरा ठीक है, पर उम्र बहुत कम है इसकी, आयु बहुत कम है, कृपा तो कोई संत करेंगे भाई, हम तो क्या करें, उम्र बहुत कम है। तो सबको नमस्कार करते थे, तो सप्तऋषि आ गए, उनको भी नमस्कार किया, तो उनमें चिरंजीव ऐसी आशीर्वाद दिया करते, चिरजीवी बनो और जीते रहो, ऐसे कहते ही ब्राह्मण कहते ही है, जीते रहो, ऐसी आशीर्वाद दी। तो वो पिता बोले कि महाराज आपने आशीर्वाद दिया है चिरजीवी बने का, तो इनका ख्याल किया उम्र कितनी है? तो भाई उम्र तेरी थोड़ी है, ये योगी होते हैं दो तरह के, एक युंजान योगी होते हैं, एक युक्त योगी होते हैं। तो भगवान तो है युक्त योगी, बिना ख्याल किए इस सब को जानते हैं, और युंजान योगी होते हैं जो अभ्यास करके, अपने योगाभ्यास करके ऊंचे बढ़ जाते हैं। वे जब ख्याल करते हैं तो उसकी बात जान जाते हैं, जितने ख्याल करे वो जान जाते हैं। तो ख्याल किया तो कहे भाई उम्र तुझे थोड़ी दूर, क्या करें? कहते हैं नमस्कार कराओ, सबको नमस्कार कराओ और भगवान शंकर की पूजन कराओ। तो उसने कहा बेटा आप नमस्कार करो, शंकर की पूजन करो, नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव जी की प्रार्थना करो, शिव का पूजन करो। तो ऐसे वो करने लगा, तो शिव जी की पूजन कर रहे थे उसी समय उसको लेने के लिए जमराज आ गए, कि बड़ा भगत है वो। तो जमराज आए, जमराज आए फांसी का ले जाने लगे, तो उसने शिवलिंग को पकड़ लिया कि महाराज मेरे को ले जाते ही मौत आ रही है। तो शिव प्रकट हो गए, त्रिशूल लेने के कह ले जाते मेरा भक्त है, कि महाराज आयु समाप्त होगी, कि तुम देख इसी पत्र में देख कहाँ आयु समाप्त हुई है, तो समाप्त नहीं हुई, भगवान शंकर का देखा हुई अच्छे जी तो मरेगा नहीं, तो कैसे ले जाते हो? अच्छा महाराज क्षमा करो, माफी मांग कर जो महाराज चले गए, वे चिरजी भी हो गए, समझे, मार करने की। तो अभिमान शील से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, जो नमस्कार करते हैं उनकी विद्या आती है, गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कले न धने नवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम। तो गुरु सेवा से विद्या बढ़ती है और नमस्कार करने से गुरुजन होते खुश हो जाते हैं। आपने सुना है ना, शंभू श्वेतार्क पुष्पे भगवान शंकर को सफेद आग की फूली चढ़ा दो खुश हो जाए। चंद्रमा नया उदय हो उसमें अपने वस्त्र का तंतु ले चढ़ा दो चंद्रमा खुश हो जाए। और भगवान याद करने से खुश हो जाए, केवल याद करो मन में खुश हो जाए तो तंतु खतने। असाध हुआ कर संपूर्ण ये संत महात्मा का हाथ जोड़ खुश हो जाएंगे। तो नमस्कार करने से सब खुश हो जाते, गुरु के चरणों में करने से गुरु खुश हो जाते हैं, गुरु खुश हो जाते, विद्या आ जाती है। तो विद्या भी इससे आती है, आयु से बढ़ जाती है। और जो नम्र होता है उसकी लोगों में बड़ी प्रशंसा होती है कि अमुक आदमी बड़े नम्र है, बड़े सरल है, बड़े अच्छे है। और शरीर में उत्साह और मन बढ़ता है। तो सब तरह से लाभ ही लाभ है। एक घर में आपके लाभ, जैसे संतों ने कहा है, अरे मुक्ति मुंड में थारे, मुक्ति मुंड में थारे, मुंड में मुक्ति, राम 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 कर। ऐसे थारे घर में ही इतना महात्म, जो बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करो, सेवा करो, चरणों में गिर जाओ। माँ का बदला कोई उतारना चाहे तो उधार नहीं सकता, उसने उसकी कोई सेवा का बदला नहीं दे सकता। तो फिर कर्जा ही रहेगा, जहां जाए माँ तो मिलती है, माँ बिना हम कहाँ जन्मेंगे। तो माँ का बदला फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बदला नहीं उतार सकते। तो क्या कि उनको राजी करो, माँ खुश हो जाएगी, खुश होने से माफ हो जाएगा, कोई पाप रहेगा नहीं, कर्जा रहेगा ही नहीं, माता खुश हो जानी चाहिए। और माँ खुश हो जाए दो बात में, एक तो सुबह शाम दोनों वक्त माँ के चरणों में मस्तक रख करके नमस्कार कर रहे, एक माँ के हाथ से भोजन कर रहे अच्छी तरह से, ठीक तरह से, तो माँ खुश आ जाएगी। आज तो छोड़ो चौखो जी मिल लो, जी सुनो जो माँ जी सुनो क्या हो गया, माल अपने को मिले अरे खुश हो जाए माँ। ये तो सच तो सो दो, अरे माँ बाप खुश हो जाए तो भगवान खुश हो जाए, माँ बाप नाराज हो तो भगवान कहते ये माँ बाप का ही नहीं बना, मेरा भजन करे तो इसका क्या भरोसा नहीं है, इसका माँ बाप का ही नहीं हुआ तो भगवान के सामने हो जाए, इसे करने से कितनी पड़ेगा आयु विद्या अशोक बलम, भगवान खुश हो जाए, परमात्मा खुश हो जाए, संत महात्मा खुश हो जाए, कुटुंब भी खुश हो जाए, सबको नमस्कार करे तो कुटुंब भी खुश हो जाए, बिरण जिठानी की लड़ाई हो जाए और लड़ाई होने पर भी छोरा जा करके अपने काकी के चरणों में नमस्कार कर ले तो बोलो जिठानी लड़ी हुई है पर छोरा पलों में प्रत्याशी मान दे देगी, प्यार कर देगी, हृदय लगा लेगी, कैसी बढ़िया बात है। और बड़े बड़े पाप नमस्कार से करने से कट जाते हैं। नमस्कार करने का अर्थ होता है कि मैं आपके चरणों के शरण हूं, अब चाहे मारो चाहे तारो, मानो दंड दो चाहे माफ कर दो, तो चरणों में आने वाले को माफ कर देते हैं। तो ऐसी बढ़िया बात है, बड़ा सस्ता सौदा है, ऐसे घर वालों को नमस्कार करो और घर वालों की आज्ञा पालन करो, माँ की आज्ञा पालन करो, आज्ञा संबंध सुसाई सेवा, माता है पिता है बड़ी भौजाई है भाई है चाचा ताऊ आदि के घर में बड़े हैं, उनकी आज्ञा पालन करो, सुसाई सेवा, माता है पिता है बड़ी भौजाई है, भाई है, चाचा ताऊ आदि जो घर में बड़े हैं उनकी आज्ञा पालन करो, खुश हो जाएंगे। जैसे वे कह जैसे काम कर दो, सेवा कर दो, कितनी बढ़िया बात है, घर में ही अपना आनंद हो जाए। तो सेवा करो उनकी, काम धंधा आप करो, दूसरों का तुम ठहरो, मैं करूँ वो कहते मैं ठहर ठहर हम करेंगे काम, परिश्रम का काम अपना करे, रसोई बनाने का काम अपना करे, जल पाने का काम अपना करे, जल भरने का काम अपना करे, झाड़ू देने का काम अपना करे, रसोई में चौका कर देना बर्तन बांधने का अपना काम करे, रसोई बनाने का अपना काम करे, कपड़ा धोने का अपना काम करे, बच्चों के पालन करने का उनका काम अपना करे, तो कितनी बढ़िया हो जाए। घर में आदमी घने हो जाएंगे, काम थोड़ा हो जाएगा, फिर नौकर रखने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा आपस में स्नेह बढ़े। जहां संपदा संपत्ति नाना, सुना नहीं आपने, जहां संप तहां संपत्ति नाना, जहां कलह तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में स्तंभ होता है तो वह संपत्ति लक्ष्मी आती है। आपस में लड़ में लगते हैं तो उस लड़ाई में लक्ष्मी रवाना होती है, कड़े में कौन ठहरे भाई, तो लक्ष्मी रवाना हो जाए। और आपस में प्रेम हो वहां लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी माँ तो बाल बच्चों को खुश देखना चाहती है ना, वो तो लोक माता माँ, माँ नाम है उसका, लक्ष्मी का नाम माँ है, इंद्रिया लोक माता माँ क्षीरो तनया रमा, तो माँ है, तो सबकी माँ है, माँ खुश हो जाए, थोड़ा थोड़े सब राजी रहते हैं तो लक्ष्मी आती है, कितनी बढ़िया बात है। तो सेवा बड़ों की सेवा करने से धन आता है। जहां संप आपस में प्रेम तहां संपत्ति नाना नाना प्रकार की संपत्ति आती है। जहां कला है तहां विपत्ति, आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो वहां देवता कूच कर जाते हैं, वहां लक्ष्मी भी आशीर्वाद हो जाती है। तो आपस में कला नहीं करना, रोजी नारी राड़ आपस भी अच्छी नहीं बने, जहां तक बाढ़ चटपट की जो छकरिया लाड़ आड़ी बाढ़ कर दे, आपस में खटपट न हो, प्रेम से रहो भाई, घर में रहो तो प्रेम से रहो, कितनी बढ़िया बात। दूसरों पर असर पड़ेगा, सगे संबंधी आपके घर की लड़की लेना चाहेंगे कि वो उस घर की लड़की लाओ जिस घर में स्त्रियां आपस में प्रेम रखती है, आदर करती है, ऐसी लड़की लाओ जिसमें हमारे घर में संपत्ति बढ़े। और जहां सास बहुत डरती है, जेठानी जेठानी डरती है, नंद उदयी डरती है, वह घर की छोरी पता लग जाए तो ले कौन लावे चिंगारी, ये आग की चिंगारी हमारे घर में आ जाती, असियान लाए लग जाएगी, तो बोलो सगे संबंधियों में इज्जत होगी, लड़की का संबंध भी इज्जत भी होगा, लोग आदर करेंगे। तो ये प्रेम रखने में फायदा है। तो नमस्कार करे, काम धंधा मैं करूँ, आप छोड़ो मैं करूँ काम, मैं करूँ, ऐसा काम करने वाले को महाराज एकता देख करके बड़े बड़े डर जाते हैं। जिन घरों में प्रेम होता है आपस में, उन घरों की लक्ष्मी दिखती है लोगों को बहुत। लोग देखते हैं ना जाए इतना कितना धन है इनके पास, अब उसमें खटपट होती है तो लोगों में भी बड़ी बेइज्जती होती है, और धन का घर का धन जाता है, लक्ष्मी कम होती है, कड़े होती है ना, विपत्ति आती है तरह तरह की। इस वास्ते आपस में स्नेह रखना, चीज वस्तु देना, चीज वस्तु दो, ये देने के लिए है, आपके खाने पहनने निर्वाह करने के सिवाय जितनी वस्तु है वे आपकी नहीं है। यावत भी एक जठरम तावत स्वत्व में दे ना, जिसने से अपने पेट भराई हो जाए, अपना निर्वाह हो जाए, उतना तो आपका है, और अधिक जो भी बनने तो अधिक में जो अभिमान करता है हमारा ये सस्ते का वो चोर है। और चोर इतना ही नहीं कहा सस्ते नो दंड मार भी उसके दंडा पड़ना चाहिए दास जी ने कहा है। तो अपने खाने पीने के सिवाय वो औरों की है। जब कोई घर में मांगने के लिए आ जाए रोटी है तो उसको दे दो उसकी रोटी समझ उसको दे दो उसकी वस्तु समझ उसको दे दो कपड़ा उसका समझ उसको दे दो जल उसका ही समझ उसको पहना दो। हम वस्तु को जैसे भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण करे ऐसे गृहस्थ के घर पर भूखा आ जाए तो उसके पांची की रोटी है। आपके बहू आती है वो पूरी की पूरी आकर बैठ जाती है तो रोटी और कपड़े की पूरी भागीदार है पर रोहित बन को तत्काल आ जाए तो एक रोटी का भागीदार वो भी हो गया हिस्सेदार हो गया। उसको अगर भिक्षा न दी जाए तो दोष लगता है। जो पास में कुछ नहीं रखते और भिक्षा का अनुपात भिक्षा करते हैं वो भिक्षु ग्रह पर आवे और उसको न दिया जाए तो कहते वो तुम्हारा पुण्य ले जाएगा। किसी दूसरी बात बती अतिथि रहस्य भगनाश भगनाश हो जाए आसान में भंग हो जाए उसकी अग्रहात प्रसिद्धि वर्तन ले दौड़ जाए स तस्मय दुष्कर्म वर्तवा पुण्य मादाय रचती। वो पाप तो दे जाता है पुण्य ले जाता है। और बताया है ऐसे नहीं दिया जाए जो ब्रह्मचारी यथिस्तेव पकवान स्वामीना हो ब्रह्मचारी है सन्यासी है त्यागी है वो भिक्षु आ जाए घर पर और उनको अन्न न दिया जाए और अन्न न देकर खा लेता है तो एक चांद्रायण का व्रत करे एक महीने का तो शुद्धि होती है इतनी अशुद्धि हो जाती है। आपको ये कोई कायदा है हमारे सहायता तो कुछ कर ही नहीं रसोई बने तो तैयार हो जाए अब उसको न देने का दोष लगता है। इस घर पर आप जन्म के आ गए को ब्याह करके आ गई तो पूरा खाने का हक हुआ तो रसोई के सदे कोई आ गए तो एक रोटी का हकदार वो भी है उनको दे दो सत सालों में तो बांटिए शक्ति के अनुसार जितना दे सकते हो उतना। ऐसे गृहस्थ का खास धर्म है कोई भूखा न जाए सबको अन्न दो जल पिला दो आसन दो आदर दो आओ भाई बैठो तिरस्कार मत करो अपमान मत करो आदर करो आदर न करो तो कम से कम तिरस्कार मत करो कड़वे वचन मत कहो। जो को घर आतो सो तो मूर ही सुहातो ना ऐसे घुर्रा तो मानो स्वान है कटाऊ सो मन काटने वाला कुत्ते की तरह उठ रहता है तो उसका दोष लगता है। आगे आज नहीं देना हो तो भाई हम तो देते नहीं प्यार से तो बोलो करवा मत बोलो मीठा बोलो न निम चलन पर ओबर ढकदान ये पांचों चंगा नानगा हरी भज हाथा बैठ तो मीठा बोलना सबसे प्यारे बोलो ना देना वो दिन मारे तो हमारा तो काम पड़ा है भिक्षा का बड़े बड़े घरों में गए भिक्षा तो कह दे हम तो देते नहीं वो ठीक भाई नहीं देते कोई कोई लड़ाई करने को तैयार हो जाए। एक माई ने कहा क्यों आया जो घर पर मेरे क्यों आया घर पर भूख लग गई आ गया भाई जाने मेरे में अब जाता क्यों है तो मैं क्या करूं कि ले जाओ तो मेरे पास आया ही हूं कि मेरे को पाप लगाता है खा भी जाता है मैं तो पाप लगा रहे नहीं है हमारी नियत ही नहीं है कैसे कोई नरते भी है तो माई कड़वी बोली पर मैं भिक्षा दी मेरे को भिक्षा देवी ऐसे माताएं होती है कोई प्रेम से देती है कोई दुख पाकर लेती है। अरे बैठना ही है तो दुख पाकर क्यों दो, प्रसन्न होकर दो। ऐसे प्रसन्न होकर बैठने से ठाकुर जी आ जाए। अपना एक कांची नगरी में रहने वाला ब्राह्मण था, दामोदर दत्त नाम था, नामोदर। तो वो ब्याह करके आया तो अपनी स्त्री को कहा कि घर पर कोई भी आ जाए तो तुम रहती हो घर पर, उसको अन्न देना, ये गृहस्थ का खास धर्म है। तो मैं अब गृहस्थ बन गया हूं, ब्याह हो गया है, इस वास्ते कोई घर पर आवे तो उसको भोजन देना। तो दोनों को लड़की भी बड़े अच्छे घराने की थी, उसने कहा बहुत अच्छी बात है, तो कोई घर पर आते तो वो भोजन देती। और घोड़ा में तो हमारे घर में थे सुदामा की तरह, घर में धन था नहीं, बड़े साधारण। तो भिक्षा को जाते, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वे अन्न भी मांगते हैं, आटा भी मांगते हैं, ऐसे भिक्षा के लिए ब्राह्मण लोग जाया करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बाहर पीछे बता देते हैं, वो दे देते हैं कुछ। तो वो ला करके अपने स्त्री को देते, स्त्री पीस बनाकर रोटी बनाकर भोजन करा देती, कोई अतिथि आता तो उसको भोजन दे देती। तो एक दिन क्या बताए, महाराज घूम करके आए, भिक्षा में कुछ मिला नहीं, मिला नहीं। तो ब्राह्मण कहा ठीक है महाराज, आज नहीं मिला तो आज भगवान ने इजाज लेकर दिया एकादशी का व्रत करो। ब्राह्मण बोले एकादशी व्रत करो, पर कोई अतिथि आ गया तो क्यों चिंता करते हो, भगवान कृपा करेंगे। इतने में बाहर से आवाज आई, एक बूढ़े ब्राह्मण सन्यासी वो आए और बाहर तबूती पर बैठे कि दामोदर है भीतर, दामोदर कहा महाराज। तो गया जार पका पड़ा, बोलो कहते बेटा आज तो तुम्हारे घर की भिक्षा करेंगे। हमारे बहुत मन से मन में थी कि दामोदर भिक्षा देता है, वो आदर करता है, तो आज मन में आया तो आज दामोदर की यहां भिक्षा करेंगे। हाँ महाराज पधार, टूटी सी चटाई उसको विराजमान कर लिए और भीतर गया कि महाराज को भोजन क्या करावे। कहना आप घबराओ मत, तो कि नाई के घर से कतर नहीं है, वो कतर वो कतर या क्या करेगी, कि लाओ ना उसे यार कतर ने लिया आ लिया। तो उसने अपने माथे में 20-20 का केस कतर करके और दोनों ने मरकर डोरी बना दी, ये बाजार में ले आओ, इनका पैसा जितना चावल उतना ले आओ और अनुमान दे। दामोदर बड़ा खुश है, बड़ी बड़ी सूझ इसकी बड़ी विचित्र है, अब कुछ नहीं है तो केस तो है ही। वो ले आया चावल, ले आया थोड़ा दाल, ले आया कोई पुणे की पत्ती, ले आया और महाराज जी बन गई रसोई। रसोई बने तो बाबा जी पानी के लिए बैठ गए, सब विराजमान कर दिया, जल भर दिया। पाने लगे तो बाबा जी सबका सब पा गए, जितना बना था चावल। हाँ भाई बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है लाओ भैया, तो अब बस अब नहीं जाना, अब ठीक है समझ गए वो तो, अब नहीं, अब बहुत चिंतित हो। तो बेटा आज तो हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे थोड़ा सा, तो बूढ़ा शरीर है कहाँ जाएंगे यहाँ से। हाँ महाराज है बेटा, जो चटाई में जिस पड़ा दिए अलमार के कपड़े हवा करने लगे। देखो भाई शाम को ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, अपने उतना सा भात बन जाए तो शाम को पा लेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, अब खा लो क्या करे। तो कहते कतरनी तो अब घर पड़ी पड़ी है, अभी तो लानी है ही नहीं, सब केस कतर लिया। उसने ऊपर कपड़ा बांध लिया, उसे बस उसे डोरी बना ली, वो लाए उसने फिर ला कर महाराज को भोजन करा दिया। अब दोनों ने उपवास है, आज खावे क्या है, कोई बेला ही नहीं। महाराज चटाई पर बैठ गए, महाराज सो जाओ बेरा जाओ। अब महाराज को नींद आई तो दोनों विचार करते कल क्या करें। देखो बूढ़ा शरीर है, भले सन्यासी पवित्र ब्राह्मण है, सन्यासी है, अपने कल भी भोजन करो। हाँ हाँ, कल मैं भिक्षा को जाऊंगा, जो मिल जाएगा लाऊंगा, अपने भोजन करोगे अपने। ऐसे बात कर रहे थे उत्साह, तो वो तो महाराज सुन रहे थे सभी अंतर्यामी बड़े खुश हुए। फिर दोनों लेट गए ऐसे ही, दोनों एक तरफ वो पत्नी है, एक पति, दोनों दौड़ते हुए। नींद आएगी उनको, बाबा जी जाग उठे, जाग कर कहा कि तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। और स्त्री को कहा कि बहन तेरा भी शरीर गहना से कपड़ों से लज्जा बढ़िया से हो जाए, श्रृंगार हो जाए। पति को भी कह दिया, घर को कह दिया कि भंडार सब भंडार धन से सबसे सब हो गया। और महाराज अंत लिया, सुबह होने लगा तो पत्नी जगह जगह दिन जी बाहर क्या होते थे, समय पहले बैठे भाड़ा भाड़ा, अरे गहने कहाँ से आ गए और बढ़िया कपड़े पहन लिए, पति देव के कपड़े, मकान भी बड़ा बढ़िया देखा। तो पति के चरणों के महाराज महाराज, अरे क्या क्या है, अरे देखो तो सही, कि तो वो कहाँ गया, सन्यासी कहाँ गए। अरे सन्यासी के देखो, आप ये भी विचार करो, घर को देखो, मेरे को देखो, अपने आप को देखो। तो ये क्या हुई, को मामूली सन्यासी नहीं थे वो, तो ठाकुर जी पधारे थे एक सन्यासी के रूप से, ऐसा किया है तो क्या करें। हमने तो आदर स्वीकार किया ही नहीं, हम तो समझे ही नहीं, हमने भगवान समझे ही नहीं, हमने तो आदर संस्कार ही नहीं किया, केवल पेट भर से स्नान दे दिया और हम समझे ही नहीं। अब लगे रोने कि महाराज मैं आपको कितना कष्ट हुआ होगा, हम तो महाराज को समझे ही नहीं। भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहते हो, चाहते महाराज आपके प्रेम की भक्ति, और क्या चाहे शरणों की, भक्ति के सिवाय कोई चीज बढ़िया नहीं है। भक्ति दे दी और कहा तुम रहो, ये सब तुम्हारे को संपत्ति दी है, आदर सत्कार पूर्वक सत्कार करते हो, दुखियों को पैसा देते हो, इस बात ये संपत्ति दी है, तुम्हारा बड़ा अच्छा है, यहाँ रहो भजन करो, अंत धाम में आ जाओगे, ऐसे धर्म दोगे। तो ऐसे दामोदर ब्राह्मण बड़ा दुआ है, तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में आते ही ऐसा कह दिया अपनी स्त्री को कि अपना अतिथि सत्कार करता है, कोई घर पर आए जब भूखा न जाए। तो अच्छे गृहस्थों का ये खास धर्म होता है, कोई घर पर आवे थोड़ी रोटी दे दो, जितनी मर्जी हो दे दो, खाली मत जाने दो, जवान का उत्तर नहीं हाथ का उत्तर दे दो थोड़ा। अनुदान के लिए सब पात्र माने गए, सोना देना हो, चांदी देना हो, रुपये देना हो, कपड़ा देना हो, जमीन देना हो, कई दिव्य देना हो, उसमें सुपात से देखना। कन्यादान करना जो जाति वर्ण आश्रम आदि देख कर अपने ठीक तरह वर्ण को देख फिर कन्यादान करना। अन्न जल वस्त्र, अन्न जल वस्त्र औषध, इसके लिए ज्यादा मत देखो, जिसके आवश्यकता देखो उसी को दे दो, इसका बड़ा पुण्य होता है। ये घर खास गृहस्थों के ऊपर विशेष लागू होता है, क्यों ब्रह्मचारी बिचारी कुछ रखते नहीं, वानप्रस्थ जंगल में रहते हुए भी कुछ रखते नहीं, और सन्यासी बाबा जी के जात है क्या उनके पास, तो गृहस्थ के ऊपर ही लागू होता है। गृहस्थ पर तो सबके माँ बाप गृहस्थ ही है, सब तो सुनाया था तुम्हें माँ बाप हो, तुम भी हमारे बेटा बेटी हो, तो गृहस्थ का ख्याल करवा है कोई, उसको आदर देना। अन्नदान महादान, अन्नदान महादान है, छोटा दान नहीं है, विद्यादान तो होती है, विद्यादान और से अधिक है, अन्य दक्षण का यावत जिंदगी विद्या, विद्या में ब्रह्म विद्या भगवान में लगा देना, सत्संग में लगा देना, गीता में रामायण में लगा देना, इसका बड़ा भारी पुण्य है। पारमार्थिक सेवा है, उसके कल्याण की सेवा है, तो आत्मा का कल्याण करना ऐसी बड़ी बात है, बढ़िया, कितनी बढ़िया बात। तो सबको भगवान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, अपने उनका आदर करो, सत्कार करो। कोई बीमार हो तो उसको दवाई दो, नींद आती हो तो अपना औषधा भी भेजो, अच्छे वैद्य हो उनके पास ले जाओ कि महाराज की सहजार हो जाए, अपने से नहीं हो उसे तो औरों से करो। इस तरह से हरेक का उपकार करो, परोपकार है पुण्य है, कल बताया था ना परोपकार। अष्टादश पुण्य सु व्यास से बचना द्वयम, अठारह पुराण दो ही बात है, परोपकार है पुण्य है और पापा है पर पीड़ित, तो दूसरे को पीड़ा देने ये पाप होता है और उपकार करना ये पुण्य होता है। तो दिया जग में चांदना, दिया जग में चांदना, दिया दीपक, दिया जग में चांदना, दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया हो। घर हाथ में दीपक नहीं हो तो घर में पड़ी, घर में पड़ी बस दिखे नहीं, दीपक हो दिख जाने में। ऐसे दिया जग में चांदना, इस बार दिया करो सबको, धरा चांदना है, घर में धरान पाइए और लिवारे घर में धरो जो पाएगा नहीं मरोगे जल जाएगा यही, जो कर दिया न हो दूसरे दिया नहीं क्या मिलेगा। इस दातव में भी दिया दान हम दिए थे, गीता कहती है सत्रहवें अध्याय 20वें श्लोक में, दातव हम देना चाहिए, देना हमारा कर्तव्य है, हम गृहस्थ में रहते हैं, हमने संग्रह किया है, वस्तु रखते हैं, तो भाई माल पर जगह लगती है, तो संग्रह किया तो देना हमारा काम है, दातव्य देना कर्तव्य, ऐसा समझ दिया जाए। अनुपकार में उपकार करने के प्रति दिया जाए वो दान नहीं होता है। आज दान देते तो अपने ब्राह्मण को दो, सगों के ब्राह्मण को दो, उनके रसोईया को दो, क्योंकि उनके काम पर हमारे रसोई का देंगे, ऐसे मां कामना करके पीछे देते हैं। तो कामना किया हुआ हेतु प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार दिए और क्लेश पाकर दिया जाए वो राजस्व होता है, तो राजस्व का फल अच्छा बढ़िया नहीं होता। तो दातव्य में दिए दान हम दिए थे अनुपकार, देशे का ले चपाते थे, गर्मी दिन में जल का दान है, कपड़े का दान, चीज का कपड़ा दिया दान है, देश है पात्र, जिस देश में जो चीज है उस देश में, उस पात्र में, उस समय में, देश काल पात्र सब दिया जाए, वो दान सात्विक होता है। सात्विक पुण्य निष्पत्ति, पवित्रता की निष्पत्ति होती है, कल्याण होता है, उद्धार होता है जीव का, तो देने से फायदा है। ऐसे आपस में प्रेम रखो और दो, आपस में भी ऐसा रखो कि चीज वस्तु देवयानंद जाओ, जेठानंद जाओ, नाग में जाओ, सासू जाओ, कोई काम में ले ले, हमारी वस्तु बड़ी अच्छी बात है। औरों को देने से पुण्य होता, तो घर वाले भी कोई राजी हो तुम्हारी चीज ले तो बड़ी आनंद की बात है, ऐसे दो। और बालकों का पालन करो, घर में जितने बालक हो उनका पालन करो, ये बालक आप समझे भोले हैं, ये भोले आपके दृष्टि से दिख रहे हैं, अंकुचम चले बुढ़ाड़िया चले और भी देख रहे हैं, दृष्टि देख करके वो प्रेम दृष्टि गोदी में चले जाएंगे और प्रेम दृष्टि तट हुआ से लौट जाएंगे, वे समझते हैं बालक, तो प्यार से बालक गोदी में आ जाएगा, तो आप प्यार रखते उसका पहचान हो जाएगी, घर के बालक आप गोदी में आकर खेलने लगे तो समझना चाहिएगा आप ठीक बालकों की कृपा दृष्टि से देखते हो, ऐसे बच्चों को राजी करो। अब छोटे छोटे बच्चे राजी हो जाएंगे, बड़े होंगे तो तुम्हारा माँ ही मानेंगे, इन माँ ने हमारे पालन किया है तो आदर होगा, घर वाले पे सेवा करेंगे बड़े हो जाएंगे तो, और सेवा नहीं करोगे भाई इन बच्चों में भाव सद्भाव पैदा नहीं होगा। अपने अपने बच्चों को तो भोजन देती है बढ़िया बढ़िया, तू साधन देती है तो बच्चे बहुत जल्दी पहचान देते हैं। ये स्वार्थ की बात पक्षपात की बात बच्चों के मन पर असर करती है। बड़े हो जाते हैं वो बच्चा कोई आपका ये मोह पूर्व पड़ा हुआ बच्चा अच्छा नहीं होता। आसक्ति मोह पक्षपात से पड़ा हुआ बच्चा है ना वो सेवा नहीं करता, और दूसरे सेवाओं का आपने पालन किया नहीं तो वो छोड़ा हो गया कपूत। अब वो सेवा करना ही दूसरे सेवा करते नहीं कि अपने बालों को खिला दीजिए अब देख ले वो सेवा करे। और सबकी सेवा करो तो सब बालक मानते थे तो हमारी माँ की तरह ही है, जैसे माँ करती थी उससे भी ज्यादा लाड़ रखती है, तो उन माताओं की सेवा करे घर के सब बालक माँ मानेंगे तो कैसी बढ़िया बात है। तो लोक में परलोक में दोनों तरह से हित होता है, इस तरह से सबका सेवा करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, उदारता रखो। उदारता ये धन साथ में नहीं जाएगा मगर उदारता जाएगी, लोग समझे पुण्य करेंगे ये पुण्य हमारे साथ जाएगा। बात ठीक है ये पुण्य नहीं है, बड़ा भारी पुण्य ये है कि जो भाव उदार बढ़ गया सबके उद्धार का, उदार भाव है तो उदार भाव साथ जाएंगे। भगवान तो अर्थार्थी अर्थ को भी उदारा सर दे, सबको उदार करते मेरे भजन में लगे हुए हैं, अर्थार्थी भी उदार धन चाहता है, आर्थ भी उदार, जिज्ञासु भी उदार, ज्ञानी भी उदार, उदार सर्वे सबके सब उदार करने। इन दरबार दीन को आदम रीफ सदा चलाई सदा से नीति है, भगवान सबको उदार समझ, तुम्हें चरणों में प्रेम करो और संसार में सबकी धर्म सहित सबकी सेवा करो। जिन घरों में कोई आप हो तो घरों में यही पहुंचो, गांव में भी पहुंच लो भी किसी घर में अन्न ना हो तो छिप करके रात रात में अन्न पहुंचा दो, कपड़ा पहुंचा दो, उनको पता ही नहीं लगे। इस तरह से घरों में भूखे भिखारी नंगे जिनकी सेवा करो बहुत बड़ा पुण्य होता है। और ब्राह्मण हो ब्राह्मणी है, कोई ब्राह्मण है ब्राह्मणी है, बच्चे हैं अब पति नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करो, उनके बच्चों के पढ़ाई का प्रबंध करो, लड़कियां हैं तो उसके विवाह का प्रबंध करो, किसी तरह से सेवा करो तो दोनों तरह की सेवा होगी। ये सुदामा जी ने कहा है सीधते थे कुटुंबी ने, आप ब्राह्मण हो शुद्ध और खाने को अन्न नहीं है तो आप जाओगे तो महाराज को जरूर देंगे, ऐसे पात्र कम मिलते हैं। अभाव ग्रस्त है ब्राह्मण है सदाचारी है और भगवान के वो तो प्रेमी भक्त थे, भगवान के साथ में पढ़े थे ना, पढ़े सब विद्यार्थी थे, एक गुरु के पास पढ़े गुरु भाई जी थे। उस ब्राह्मण ने कहा आप जरूर जाएंगे क्यों आप सदाचारी सदगुणी ब्राह्मण हो और अभाव ग्रस्त दोनों तरह से पात्रता है तो ऐसी पात्रता कहाँ मिलती है, भगवान जरूर जाएंगे। मैंने भगवान ने सब कुछ दिया तो ऐसे सबके ग्रस्तों के लिए ये भगवान करके दिखाते हैं, कह करके दिखाते हैं और करके दिखाते हैं, इसलिए सेवा करते।